بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 18. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کی آیات سورۃ مومنون کی حقیقت میں ایک مومن کی چلتی پھرتی تصویر ہے. اس کی ترتیب پہ غور کیجئے کہ سچا ایمان جب دل میں آتا ہے تو اس کے بعد نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے. جب ایک انسان بڑے پیار سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے لغویات کی محبت نکل جاتی ہے. وہ ٹائم ویسٹرز اور منی کلر چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اور جب زندگی سے اس طرح کی خرافات نکلتی ہیں تو مال بچ جاتا ہے، اس مال پہ وہ زکوٰۃ دے گا، تو ساتھ ہی تزکیہ ہوا نفس کا تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بھی ایک انسان کبھی حد سے نہیں گزرے گا. اور جب یہ سب کام کر لیے تو خوشخبریاں دی گئی کہ اس کے بعد اس انسان کا دوسروں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی درست ہوگا، پھر اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی بھی وہ حفاظت کرے گا، اور اسی طرح سے نمازوں کی حفاظت کرتے کرتے اولائک ہم الوارثون، یہی جنت میں جانے والے ہیں. حقیقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا بنا دے. اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، جس کے اینڈ پہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ان سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے لے کر باہر آنے اور جینے کے بعد ہے، وہ کہہ کہ پھر تمہیں موت آئے گی، پھر اس کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے انسان کی کہانی چند لفظوں کی. ضرورت ہے کہ آج اس دنیا میں انسان اپنے لیے بہتری کے فیصلے کر لے. اس کے بعد کائنات کی کچھ چیزوں کا تذکرہ، آسمان سے اترتے ہوئے پانی کو دیکھ لیں، یا کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کو دیکھ لیجئے، یا زیتون کے درخت کو دیکھیے، اور یا دودھ کو دیکھیے، یا کشتیوں کو دیکھیے. یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ مائلیج سٹونز ہیں. ہر سائن دکھاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور کیا خوب بنایا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی کہانی، جس میں سبق یہ دے دیا گیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور آخری انجام تو اللہ والوں کا ہی بہتر ہوتا ہے. اور اسی میں آیت نمبر 30 میں دعا سکھا دی، کسی بھی جگہ اتریں، کسی گھر میں جائیں، کسی جگہ سٹاپ اوور لیں، دعا پڑھ لیجئے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے اللہ، مجھے برکت کے ساتھ اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. حقیقت ہے کہ ہر لمحے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قوموں کی وہی روش، جس کا تذکرہ پیچھے بھی بہت جگہ پڑا، اور انبیاء کرام کی وہی طلب اور تڑپ، اور وہی ان کو آگاہ کرنا، جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ بھی ہے، اور ابن مریم کا قصہ بھی ہے. اور آیت نمبر 51 میں تمام رسولوں کو کہہ دیا، کلو من الطیبات واعملوا الصالحات، طیب کھاؤ اور اچھے عمل کرو. حقیقت ہے کہ انسان کے کھانے کا، یا جو پیٹ میں لقمے جاتے ہیں، وہ کس سورس سے آئے ہیں یا وہ کیا ہے، اس کا کیے جانے والے اعمال سے گہرا تعلق ہے. یہ بالکل ایسے جیسے گاڑی میں اچھی گیس ڈالیں گے، اچھا پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی اچھی چلے گی. بعض وقت کچرے والا آئل ڈل جائے، گاڑی چھٹکے دینے لگتی ہے. تو رزق حلال کا اثر یہ کہ انسان کا نیکیوں میں دل لگتا ہے، اور رزق حرام کا اثر اس سے اپوزٹ ہے. ایک کرائیٹیرین ہے جس پہ انسان خود کو پرکھ سکتا ہے، اور اپنی اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی کاموں میں مگن ہیں، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں ڈال کر اپنے چھوٹے سے ٹکڑے پہ خوش ہیں، آپ ان کو رہنے دیجئے اور یہ اپنے حال میں خوش رہیں. اس کے برعکس آیت 59 اور اس سے اگلی آیات میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دیں. ڈر کیا ہوتا ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں. آپ دیکھیے، کسی بہت بڑی ہستی کے لیے کوئی چیز لینی ہو، کوئی گفٹ دینا ہو، تو دل ڈرتا ہے پتہ نہیں ان کو پسند آئے گی کہ نہیں. اسی طرح ہر نیکی جو اللہ کے پاس ایک تحفہ بن کے جائے گی، تو اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کیا کریں کہ کیا یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جہنمیوں کو کچھ بات سنائی گئی کہ دیکھو، تمہیں میری آیتیں سنائی جاتی تھی، تم جب نہیں مانتے تھے، تو آج جہنم میں پڑے رہو، تمہیں اس سے کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس میں ایک جو بات ہے نا، سامرن تہجرون، آیت 67 میں، तो ये बेकार किस्म के मशगले थे। समीर कहते रात को कहानियां सुनाने वाला, यानी घंटों के एतबार से फन के नाम पे बेकार चीज़ों को देखने वाले क़यामत के दिन हसरत का शिकार होंगे। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगे हुए चंद इल्ज़ामात का तذکرہ करते हुए आयत 78 में फरमा दिया, वहुवल्लज़ी अंशअलकुम सम्म वल अबसार वल अफ़िदा, तुम्हें कान भी दिए, आंखें भी दी, दिल भी दिए, लेकिन कलील लम्मा तशकुरून, बहुत थोड़े लोग इस पे शुक्र करते हैं, यानी इन नेमतों से सही फ़ायदा नहीं उठाते, या जिन कामों के करने का हुक्म है वो नहीं करते, अपने मनपसंद कामों में लगे रहते हैं। इसके बाद आयत नंबर 96-7 में बहुत खूबसूरत असूल बताया कि लोग आपके साथ बुरा भी मामला करें तो आप उसका जवाब भलाई से दें, और अगर शैतान आपको उकसाए, आपके अंदर आना आ जाए कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, तो दुआ सिखा दी। ये दुआ है उस शख्स के लिए जिसको दूसरे दुखाएं और उसके दिल में उनके लिए बुरा ख्याल आए, तो क्या मांगिए, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान के वसवसों से, हम से, वाउज़ भी कर रब्बी यहदुरून, और इस बात से भी कि वो मेरे पास हाजिर हों। तो क्या पता चला कि नफ्स और शैतान बंदे को उकसाता है दूसरों को गलत जवाब देने पे, ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। और अगली आयतों में फिर ऐसे शख्स जिसने सारी ज़िंदगी ज़ाया की उसकी मौत का जिक्र है कि मौत के वक्त तड़पेगा, रब इरजिऊनी, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज, क्यों, लअल्ली अअमलु सालिहन, ताकि मैं अच्छे काम करूँ, फ़ी मा तरक्तु, जिसमें मैं छोड़ चुका, यानी दुनिया में वापस भेज ताकि मैं अच्छे काम करूँ। जवाब क्या, कल्ला, हरगिज़ नहीं, क्योंकि इन्ना कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये बस एक बात है जो ये कह रहा है, यानी अगर इसको मौका दे भी दिया जाए ये फिर आके गलत ही काम करेगा। क्या ये तब ऐसा नहीं हुआ, बीमार हुए, बड़ी दुआएं की, अल्लाह सेहत दे दे, बहुत नेक हो जाएंगे, कभी कोई बच्चा घर पे ना आया, कभी और कोई धड़का लग गया, दुआ कर लिया अल्लाह आज ये काम हो जाए, बस बहुत नेक होंगी, और जब कोई मरता है और उसकी डेड बॉडी सामने रखी होती है उस वक्त क्या क्या सोचते हैं, लेकिन चंद दिन बाद फिर दिल बदल जाते हैं। फिर फरमाया जब क़यामत आएगी तो आपस में कोई रिश्ते नाते नहीं रहेंगे, ना कोई एक दूसरे से पूछेगा, किसी की बात मानते हुए ज़रूर सोचिएगा कि कल इसने मेरे काम आना है या अल्लाह ने। और फिर आमाल नामे के तुलने की बात है, पलड़े भारी और पलड़े हल्के, आज छोटी छोटी नेकियों को अकीर जानते हैं और बड़े बड़े गुनाह को कहते हैं कोई बात नहीं, कल क़यामत के दिन फ़ौलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम, हसरतें होंगी, झटके होंगे, और जब चेहरे की खाल गल जाएगी, तलफ़ वजूहहुम अन्नार वहुम फ़ीहा कालिहून, आयत 104 में। हज़रत इब्ने मसूद से किसी ने पूछा था ये काले हून क्या है, तो कहने लगे कभी तुमने बकरे की भुनी हुई सिरी नहीं देखी, किस तरह जहन्नमियों के चेहरे आग की वजह से जल जाएंगे, खिंच जाएंगे, खाल खिंचेगी तो ऐसे लगेगा कि मुस्कुरा रहे हैं, और पुकार क्या है, रब्बना ग़लबत अलैना शिक्वतुना वकुन्ना क़ौमद्दालीन, ऐ हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती छा गई थी और हम भटकी हुई कौम थे, हम इससे निकाल, और अगर हम दोबारा यही काम करें तो हम जालिम हैं। जवाब है काल अक्सऊ भी हलबला तुकल्लिमून, पड़े रहो इसी में, अक्सा कहते हैं कुत्ते और सुअर को धुतकारना, ऐसे पीछे इंसान करता है तो जहन्नम में इनको डाल के कहा जाएगा पड़े रहो, बैठे रहो और मुझसे बात ना करो, क्यों गुस्सा है अल्लाह को इतना, क्योंकि इन नहुकान है फरीक को मैंने बादी, मेरे बंदों में एक ऐसा गिरोह था जो हम कहते थे कि हम ईमान लाए और हमें बख्श दे और हम पे रहम कर, तू रहम करने वाला, और तुम उनका मजाक उड़ाते थे, यानी अच्छे लोगों का, नेक लोगों का मजाक करते थे, हत्ता कि तुम्हें मेरी याद भी भूल गई। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त मंजर है इन आयतों में, तो कभी दीन का और दीनदारों का मजाक ना उड़ाएं, तौफीक मांगें कि अल्लाह हमें भी नेकी की तौफीक दे, लेकिन कम अज़ कम दूसरे का मजाक तो नहीं उड़ाना। और अफहसिब तो मन्नमा खलकनाकुम, 115 आयत में दो सवाल है जो मेरे आपके लिए भी सोचने वाले हैं, गौर व फिक्र के हैं, तदब्बुर करें इन आयतों पे तो वाकई ज़िंदगी का ख़ुलासा समझ आ जाएगा, क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया, बस खाने पीने घर सजाने सजने संवरने के लिए, बच्चे पैदा हुए बड़े हुए शादियां कर दी ख़त्म, और तुम कब्र में चले गए, नहीं ये तो मकसद नहीं होगा। और वन न को मिले ना ला तुरजाऊँ, दूसरा सवाल क्या तुम हमारी तरफ नहीं लौट कर आओगे, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में ही ज़िंदगी का मकसद दे, पर्पज़ ऑफ लाइफ को लेकर जिएं और बामकसद ज़िंदगी बसर करें। और आखिर की बड़ी खूबसूरत दुआ, इसको याद कर लीजिए कि रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत ख़ैरुर राहिमीन, कि रब बख्श भी दे, रहम कर, तो बेहतरीन है रहम करने वाला। इसके बाद सूरत नूर है जो हकीकत में किसी माशरे का नूर है। आज भी इंसानियत जिस तरह से दुखी है और परेशान है, वेस्ट में इसकी बहुत सारी मिसालें और जो उन्हीं के तर्ज अमल पे चल रहे हैं वो सब भी उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत है कि इसमें इस्लाम की सजाओं का तذکرہ है, लेकिन इससे पहले किससे जहन साजी की गई कि गुनाह करने के बाद लोग वाकई पलट के आ जाते थे और कहते थे कि हम पे हद लग जाए। क्योंकि जब आखिरत की जवाबदेही का एहसास होता है तो इंसान कभी भी अपने आप को इस तरह खुला नहीं छोड़ता। तो सूरत नूर का बुनियादी टॉपिक जिना और जिना के असबाब और उनसे बचने के तरीके। सबसे पहले जानी मर्द और जानी औरत की सज़ा की बात है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है। एक बच्चा जो जिना के नतीजे में पैदा होता है वो अपने नस्ब से भी महरूम रहता है। उसका कोई मामू नहीं, कोई फुफ्फो नहीं, कोई खाला नहीं, और इस तरह वो बच्चा माशरे से कटा हुआ दिखता है। और वैसे भी आप देखें तो अल्लाह ताला का दीन पाकिजगी को पसंद करता है। जिस तरह इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक में तौहीद है ना, शिर्क क्यों बुरा है? क्योंकि अल्लाह के हक में शराकत है। तो जिना अपने लाइफ पार्टनर के साथ शराकत है, इसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। फिर आगे बता दिए कि जानी मर्द जानी औरतों से ही शादी करेगा, यानी चॉइस की बात बता दी कि एक जहन के लोग हमेशा अपने ही जैसे लोगों को पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग जो गलत चीज़ों में पड़ चुके हों उनके पाक दामन लोगों से निकाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में बेजोड़ शादियां होती हैं। बस माँ बाप अपने बिगड़े हुए बेटों की शादी बड़ी अच्छी लड़की से करते हैं, ये सोच के ये उसको ठीक कर लेगी। बहुत कम हुआ कि वो ठीक कर पाए, या तब कर सकती है जब वो खुद बेचारी बुढ़ापे के किनारे पे पहुंच चुकी। तो ऐसी शादियां नहीं करनी चाहिए। इसी तरह इसमें और बहुत सी डिटेल्स हैं, ये मौजू वाकई काबिले गौर है। आज हमारे यहाँ रिश्ते करते वक्त ये चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर इसके बाद तोहमत की सज़ा है कि जिस तरह जिना की सज़ा, इसी तरह किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगाने की सज़ा 80 कोड़े हैं। इस्लाम क्या चाहता है? आपकी ज़ुबान भी कम चले, आप अपनी शर्म का की हिफाजत करें, आप अपने बोलने की हिफाजत करें। इस्लाम एक ऐसा पुरअमन माशरा बनाता है जहाँ कोई किसी की तरफ नज़र उठा के ना देखे और पिछली ज़िंदगी में जो हुआ उस पर तौबा की जाए। फिर इसके बाद आयत 6 और उसके आगे लियान की आयत है कि अगर शौहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को ऐसे हाल में देख ले तो वो तो खामोश नहीं रहेंगे, तो वो क्या करें? लियान कर लें, अदालत में जाकर निकाह को फसख किया जाएगा। ये भी इस्लाम का अदब है, इंसाफ है। क्योंकि बीवी में गलत चीज़ देखना और ना बोलना, और शौहर में गलत चीज़ देखना और ये सोच के ना बोलना कि घर ना टूटे, इस्लाम के मिजाज से ये चीज़ मैच नहीं करती। फिर उसके बाद आयत नंबर 10 से लेकर अगली तकरीबन 10 आयत जो ये हज़रत आयशा पर लगी हुई एक तोहमत के नतीजे में नाजिल हुई, जिससे पता चलता है कि इंसान सच्चा हो तो अल्लाह ताला उसकी बेगुनाही साबित कर देते हैं। मुस्लिम माशरे का मंजर खींचा गया कि जब कभी ऐसा कोई स्कैंडल आम हो तो उसको ज़ुबान दर ज़ुबान आगे नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। और अगर ऐसी बातों को काबू ना किया गया तो सोसाइटी में जीना धोबर हो जाएगा। और ख़ास तौर पे इसमें हज़रत आयशा की बहुत सिफत है कि अल्लाह ने उनके लिए क़यामत तक के लिए कुरान पाक में आयात दे दी। आयत 19 वाकये के झंडे की खबर देती है कि कुछ लोग पूरे प्लान के साथ ईमान वालों के अंदर बेहयाई को आम करते हैं। कई चीज़ें अपने मुल्कों में बैन है लेकिन ईमान वालों को सस्ती करके पेश कर दी जाती हैं ताकि उनकी नस्लें बेकार कामों में पड़ जाएं और ज़ाया होने लगे। आज देखिए जिस तेज़ी से उम्मत मुस्लिमा में प्लेग की तरह बेहयाई फैल रही है। आप बिल बोर्ड्स देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, स्क्रीनों को देखिए, फिल्मों ड्रामों को देखिए, हर जगह आपको इसका सबूत मिलेगा। मुझे आपको इसके आगे बंद मानने की ज़रूरत है, और वो बंद बन सकता है कुरान को आम करके और ईमान और तकवा को पैदा करके। इसीलिए कहा कि ईमान वाले जो हैं वो शैतान के कदमों पर नहीं चलेंगे और हमेशा ऐसे मौक़ों पे बचते बचाते रहेंगे। फिर आयत 22 में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कमल के साथ हमें भी सिखा दिया कि इवन कोई आपकी बेटी पे तोहमत भी लगा दे फिर भी आप उसको माफ़ कर दें। बहुत बड़ा दिल था अबू बकर का, जिन्होंने इस आयत के उतरने पे ना सिर्फ ये कि मस्तों का यानी जो सहाबी थे उनका वजीफ़ा दोबारा खोल दिया बल्कि उसको पहले से भी ज़्यादा कर दिया। और इसके बाद अगली आयात में अलख़बीसातुलख़बीसीन और तय्यबातुलतय्यिबीन की बात से ये बता दिया कि नेक मर्दों के लिए नेक बीवी हैं और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं, और नेक लोग अच्छी बातें भी करते हैं, बुरे लोग बुरी बातें करते हैं। फिर इसके बाद सूरत के एंड तक तकरीबन 7 ज़राए जिना है, यानी वो तमाम रास्ते जहाँ से जिना आम होता है उसको बंद कर दो। इस्लाम का मिजाज जो होता है ना प्रिकॉशन लेने का, एक मिसाल से समझ लीजिए कि जैसे आप देखिए कि पहले कुछ लोग एक गढ़ा खोदें, फिर उसके पास एक हॉस्पिटल तामीर करें, फिर एक एम्बुलेंस रखवा दें, कोई पूछे ये क्या कर रहे हो, तो कहेंगे देखो ना इधर एक गड़ा है, फिर कोई आएगा तो गिरेगा, फिर जब लोग गिरेंगे चोट लगेगी तो एम्बुलेंस में डालेंगे, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो हम बड़े खुश होंगे कि वाकई इन्होंने कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। इस्लाम क्या कहते हैं, इस गड़े को ही बंद कर दो, यानी पहले से प्रिवेंशंस ले लो कि वो काम हो ही ना। बिल्कुल आज इस मौजू में यही बात समझ आती है कि वो सारे असबाब ही दूर कर दो जिससे किसी सोसाइटी में बगैर बाप के बच्चे पैदा हों और बगैर निकाह के ताल्लुकात हों। तो पहली चीज़ यह कि घरों में एक दूसरे के घर में खुलेआम ना आते जाओ, इजाज़त लेकर आओ, अकेले में ना आओ, लोगों को पहले से मुत्तले कर दो, क्योंकि बहुत सारे फितने घरों में बेवक्त आ जाने से, और अकेले में औरत है तो मर्द आ गए, मर्द है तो औरत चली गई, लड़के लड़कियों को इकट्ठे एक जगह छोड़ देना, इससे भी बहुत सारे फितने आ जाते हैं। इस पे भी काबू पाने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ बेतकल्फ़ी के नाम पे रात दिन एक दूसरे के घरों में आया जाया जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ आयत 40 में है, मुसलमान मर्दों को कहा गया निगाहों को झुकाओ और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हकीकत है कि मर्द के लिए भी पर्दा वैसे ही अहम है जैसे औरत के लिए। मर्द जब निगाह झुका लेगा और शहवत भरी नज़र नहीं देखेगा, ठीक है ज़रूरतन दुनिया में जाते आते चलते फिरते देखना पड़ता है, लेकिन शहवत वाली नज़र नहीं होगी, गंदी नज़र नहीं होगी। अब बताइए कि एक औरत पे नहीं डाल सकता, एक बच्ची पे नहीं डाल सकता, तो फिर फिल्मों में हीरोइनों को पसंद कर सकता है, ड्रामों में अपनी पसंद की लड़कियां लड़के ढूंढ सकता है, क्रिकेटर्स की तस्वीरें लड़कियां अपने वार्डरोब्स में लगा सकती हैं। यहाँ से आपको इस्लाम का मिजाज समझ आएगा। फिर घंटों के एतबार से कोई मीडिया को स्क्रीन को कैसे देख सकता है कि जहाँ सिर्फ किसी के हुसन से मुतासर हो रहा है या उसकी अदाएं उसको लुभा रही हैं। फिर इसी तरह मोमिन औरतों को भी यही हुक्म देकर बस एक चीज़ का इजाफा कर दिया कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को ना जाहिर करो, क्योंकि औरत के जिस्म में हर जगह जीनत है। और घर के मर्दों में रहते हुए एक औरत किस तरह अपने आप को बचा के रखे, सीने पे अपनी ओढ़नियों को डाले, यानी जिस तरह चे औरत का जिस्म खूबसूरत है, इसी तरह उसको दुपट्टे को खोल कर अपने गिरेबान को छुपाने की बात है। हाँ, शौहर, बाप, ससुर, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, और इसी तरह कुछ और लोग जो कि और यानी वो औरतें जो अपने जैसी हों, नेक शरीफ औरतें, इनको रुख्सत दे दी गई, या वो बच्चे जिनको अभी तक इन चीज़ों का नहीं पता। आखिर ये क्या पाबंदी है? नहीं, ये सिक्योरिटी है, क्योंकि औरत बड़ी कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ऐसे हर फितने उठें कि जिससे बाद में इज्जत और इस्मत ख़राब हो। फिर उसके बाद एक और सद्दे ज़राए क्या है कि बिन ब्याहे लोग उनके निकाह कर दो। अय्यम कहते हैं अकेले को, वाहिद, वो बेवा भी हो सकती है, रांड भी हो सकता है, वो मुतल्लिका भी हो सकते हैं, और अनमेरिड बच्चे बच्चियाँ भी हैं। तो शादियों को डिले नहीं करना चाहिए, ये भी आज के दौर में ऐसी खराबियां पैदा करने में बहुत बड़ी एक चीज़ बन गई। फिर इसी के बाद कुछ अहकामात लौंडियों के नाते से हैं जो आज का इशू नहीं है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, प्रोस्टिट्यूशन से मना किया गया। जिस्म अल्लाह ने बनाया, इसके तकाजे भी अल्लाह ने पूरे करने को कहा, तो अपने जिस्म को बेच कर एक कमोडिटी बनाकर माल कमाना ये इंतहाई करीफ कमाई है, हराम की बदतरीन किस्म है। फिर इसके बाद बीच में अल्लाह नूरुस्समावाती वल अर्द कहकर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलाई गई कि ये सारे कामात उसी को समझ आएंगे जो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और जब वाकई किसी को अल्लाह से मोहब्बत होती है तो ऐसे मर्द अपनी तिजारतों और अपनी जॉब के दौरान भी नमाजों को ज़ाया नहीं करते, और हर वक्त वो अल्लाह ताला के सामने पेश होने का खौफ रखते हैं। फिर उससे अगली आयात में कुफर की कुछ मिसालें हैं, अंधेरे ही अंधेरे हैं। ऐसे लोग कुछ नेकियां अगर करते हैं तो दुनिया में उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में वो शराब की तरह होंगी, मिराज, कि जिसका उनको कोई बदला नहीं मिलेगा। हकीकत है कि अगर इस्लाम नूर है तो कुफर अंधेरा है, और ये आखिर में पुलसरात के अंधेरों से अब्दुल आबाद की जहन्नम के अंधेरों में डाल दिया जाएगा। इसके बाद कायनात से टीम वर्क के नतीजे में पैदा होने वाली चीज़ों का तذکرہ है, जिसमें बहुत खूबसूरत चीज़ बादलों का बनना, परिंदों का उड़ना, और इसी तरह कायनात को फ़ायदा देना है। फिर इसके बाद कुछ मुनाफिकों की बातें हैं कि वो कैसे अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनते तो हैं लेकिन मानना पसंद नहीं करते, उनके दिलों में शक है या बीमारी है, या वो ये सोचते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उनके ऊपर कुछ सख्ती कर देगा। इसके बरक्स सच्चे मोमिन क्या कहते हैं, समय ना वताना, जो हुक्म सुने बस दिल से कह दीजिए कि अल्लाह हम मान गए और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। यही मेरा आपका इम्तिहान है, मेरी आपकी औकात ही है, जो अल्लाह कहे उसको मान लें और जिससे अल्लाह ताला रोके उससे रुक जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मुश्किल नहीं है, सोचने में मुश्किल लगता है, उसके बाद अल्लाह ताला इसको आसान कर देता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला के एक वादे का जिक्र है, ईमान के बाद अमल सालेह जो लाएगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बढ़ाई देगा, उसके लिए वो दीन आसान कर देगा जो उसको पसंद है, और खौफ को अमन में बदलेगा। आज भी अगर हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ हो तो हमें वही करना पड़ेगा जिसके यहाँ करने का हुक्म दिया। फिर इसके बाद दोबारा घर के अंदर एक दूसरे से इजाज़त लेकर आने जाने की बात हुई, और जो पर्दे के औकात हैं उसमें घर के बच्चों को भी कहा गया कि बिला इजाज़त अपने माँ बाप के कमरों में ना जाएं। इस्लाम चाहता है कि औलाद और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस रहे, और ऐसे कोई भी काम ना हो कि जिससे एक दूसरे की कोई ऐसी बात सामने खुल जाए कि जिसके बाद इज्जत का ख़तरा हो। फिर इसके बाद यानी वो बूढ़ी औरतें जिनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई हाजत नहीं, ना निकाह की, ना उनके अंदर कोई कशिश रहेगी, बिल्कुल बूढ़िया भोसट, तो ऐसी औरत अगर बाहर जाते हुए अगर अपने बाहर के कपड़े हल्के कर दे तो इसमें गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर बचना चाहे तो अच्छा है। जब ऐसी औरतें अपने आप को बपर्दा लिबास में बाहर ले जाती हैं तो बच्चियाँ ख़ासतौर पर पोतियाँ नवासियाँ देख के मुतासर होती हैं, फिर उनके भी दिल में आता है कि हमारी तो नानी भी इसी तरह बाहर जाती थी, दादी भी, तो एक कल्चर बन जाता है। फिर इसके बाद हमें अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों से खाने की इजाज़त दी गई, और साथ ही साथ फिर आखिर में इज्तमाई ज़िंदगी के कुछ असूल दिए गए कि जब भी लोग किसी इज्तमाई काम पर मिलें तो उनको उस वक़्त उन तमाम कामों को एक पूरे माहौल के साथ करना है, अपनी मर्ज़ी से ना निकल के जाना है, बग़ैर इजाज़त के उठना भी नहीं, और इसी तरह से ऐसे मौक़ों पर डिसिप्लिन को कायम रखना है। अल्लाह ताला हम सबको एक उम्मत बनाकर इन बातों पे अमल करने वाला बना दे। फिर सूरह फुरकान की इब्तदाई आयात में अल्लाह ने हक और बातिल का फ़र्क बता दिया कि किस तरह से दुनिया में जीने के दो ही रास्ते हैं, एक अंधा बन के और एक हिदायत वाला बन के, और इसमें बार बार तबारक का लफ्ज़ बताता है कि जब वाकई अल्लाह की किताब ज़िंदगी में आती है तो बरकतें ही बरकतें आ जाती हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में ये खैर का मामला आ जाए, जो कुछ भी इस बारे में पढ़ा उस पर अमल वाला बना दे, दिलों को खोल दे। आयत तदब्बुर हैं सूरत मोमिनून की आयत नंबर 99 और उससे अगली आयतें। दुनियादार इंसान है, दुनिया से जाता है, हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत काल रब्बिर जेउनी, क्या कहता है, मेरे रब मुझे वापस पलटा, क्यों, लाली आमल सालेहन, ताकि मैं अमल साले करूं, फीमा तरक, तो उसमें जो छोड़ आया हूँ, यानी अब वापस भेज दुनिया में वो काम जो नहीं किए थे अब मैं वो कर लूँ, जवाब कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना कलिमतुन व काइलुहा, ये तो बस एक बात है जिसको तू कहने वाला है, यानी मानेगा नहीं, मौका मिल भी जाए फिर भी नहीं मानेगा, अब तेरा अंजाम क्या है, व मिम वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, क़यामत के दिन तक उनके लिए एक पर्दा है जब तक कि वो दोबारा उठाए जाएंगे। यह आयत भी तदब्बुर के लायक है, हर एक अपने ऊपर ले, क्या क़यामत के दिन हसरत में जाऊँ या मरते वक्त ये कहूँगी थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो कुछ और कर लूँ। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।